एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
हे खुदा, तूने सिखाई है हमें ये
तेरा ए बाप आसमानी।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम फिर से तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं, हमारे मनों को हमारे हृदयों को खोल दे, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरे वचन को सुनने और समझने के लिए मदद कर और उन्हें तेरे राह में चलने के लिए मदद कर, उन्हें बहुतायत से आशीष दे पिता। और मेरे संग हो तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है सृष्टि में सबत और मुक्ति। आइए हम परमेश्वर का वचन देखें और पढ़े जो मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 14:6-7 में यहाँ लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। वह ऊंचे शब्द से कहता था, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। प्यारो, पतन के बाद से सबत ने मानवता के लिए एक नया अर्थ ग्रहण कर लिया है। हालांकि यह परमेश्वर की मूल सृष्टि का स्मारक बना हुआ है, लेकिन अब यह छुटकारे की योजना के एक हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करता है। सबत के दिन हम अपने कामों से विश्राम करते हैं और उस परमेश्वर के करीब आते हैं जो हमें बचाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विश्राम में प्रवेश करें। बाइबल की अनेक शिक्षाओं में से जो सेवंथ डे एडवेंटिस्टों के लिए महत्वपूर्ण है, दो ने विशेष रूप से अध्ययन और चर्चा को जन्म दिया है। औचित्य और पवित्रीकरण, ये उद्धार की हमारी समझ के अभिन्न अंग हैं। और पतन के बाद से सबत ने जो नई भूमिका ग्रहण की है, उसमें भी इनकी भूमिका है। औचित्य का संबंध इस तथ्य से है कि यीशु की मृत्यु ने हमारे पापों का पूर्ण प्रायश्चित किया है और हमें अनंत मोक्ष प्रदान किया है। पवित्रीकरण जीवन भर का कार्य है। यह परमेश्वर द्वारा अपनी पवित्र आत्मा को हमारे भीतर निवास करने और हमें निरंतर अपने स्वरूप में रूपांतरित करने के लिए अनुग्रह पूर्वक प्रदान करने से संबंधित है। परमेश्वर ने 6 दिनों में स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनात्मक गतिविधि को पूरा किया। इसका स्मरण हम सबत में पाते हैं। उत्पत्ति 2:2-3 में यह लिखा है। जैसा कि रिचर्ड डेविडसन ने अपनी पुस्तक ये लव सॉन्ग फॉर द सबत में बताया है, परमेश्वर ने अपने सृजित कार्य के स्मारक के रूप में किसी स्थान पर कोई विशाल मंदिर नहीं बनवाया। एक भौतिक महल के बजाय परमेश्वर ने समय पर एक महल का निर्माण किया। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ना थकता है और ना श्रमित होता है। यह हम पाते हैं यशायाह 40:28 में। तो फिर वह विश्राम क्यों करेगा? इसका उत्तर निर्गमन 20:8-11 में दिया गया है, जो बताता है कि परमेश्वर का विश्राम हमारे लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए था। डेविडसन हमारा ध्यान निर्गमन 20:11-31 में विश्राम के लिए प्रयुक्त इब्रानी शब्दों की ओर आकर्षित करते हैं। ये शब्द अलग हैं, जो लेखक द्वारा विश्राम की एक व्यापक समझ देने के प्रयास का सुझाव देते हैं। 20:11 में शब्द नुआक है, जो शांति, स्थिरता, शांति और विश्राम का विचार व्यक्त करता है। निर्गमन 31:17 में शब्द नफास है, जो नया जीवन ग्रहण करने, खुलकर सांस लेने और तरोताजा होने का विचार सुझाता है। संयुक्त रूप से विश्राम के लिए ये शब्द केवल एक शारीरिक विश्राम से कहीं अधिक का सुझाव देते हैं। इसके बजाय ये एक ऐसे कायाकल्प और ताजी की ओर संकेत करते हैं, जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति से आती है। डेविडसन ने लिखा है, डेविडसन पृष्ठ 27-28 से यह लिया गया है। हम जानते हैं कि सबत का दिन पवित्र है, लेकिन ऐसा क्या है जो इसे पवित्र बनाता है? यह समझना जरूरी है कि सबत सिर्फ इसलिए पवित्र नहीं हो जाता क्योंकि हम इसे पालन करते हैं। जैसा कि अब्राहम हेसेल कहते हैं, यहाँ तक कि जब लोग सबत का त्याग कर देते हैं तब भी इसकी पवित्रता बनी रहती है। द सबत इट्स मीनिंग फॉर मॉडर्न मैन किताब में न्यूयॉर्क फरार स्ट्रॉस एंड गिरॉक्स में छपा 1951 में छपा पृष्ठ 82 में है। यह पवित्र है क्योंकि परमेश्वर ने इसे ऐसा बनाया है। इसकी पवित्रता का सार परमेश्वर की उपस्थिति है। हालांकि वह पूरे सप्ताह हमारे साथ मौजूद रहते हैं, फिर भी सब्बत वह दिन है जिसे परमेश्वर ने स्वयं हमारे साथ विशेष संगति के लिए निर्धारित किया है। प्यारो, सब्बत के दिन परमेश्वर हमें अनेक आशीषें देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमें स्वयं को देते हैं। क्या आपने परमेश्वर को स्वयं को आपको देते हुए अनुभव किया है? आपने स्वयं को उन्हें समर्पित करने में कैसी प्रक्रिया भी दी है? पतन ने उस रिश्ते को प्रभावित किया जो परमेश्वर अपनी संतानों के साथ रखना चाहता है। इसे हम पढ़ सकते हैं यशाया 59:2 में और निर्गमन 31:13 तथा 33:19-23 में। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग किया है, लेकिन परमेश्वर जो पवित्र है हमसे फिर भी नज़दीकी रिश्ता रखना चाहता है और हमें नज़दीक बुलाता है। पाप की बाधा के कारण परमेश्वर अब सब्बत के दिन मानव जाति से आमने सामने नहीं मिल सकता जैसा कि पाप से पहले वह मानव जाति से करता था। परमेश्वर की पवित्रता पाप को भस्म करने वाली, जो कि पाप को भस्म करने वाली अग्नि है, जिससे हमारे लिए अपने सृष्टिकर्ता से सीधे मिलना असंभव हो जाता है। मनुष्य को परमेश्वर के साथ संगति करने और उसके चरित्र और कार्यों पर मनन करने के लिए एक विशेष समय की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। हालांकि पापी होने के नाते मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के साथ खुली मुलाकात की महिमा को सहन नहीं कर सकते थे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें सब्बत के दिन आकर उससे मिलने के लिए बुलाया। डेविडसन पृष्ठ 33 में हम पाते हैं, जैसा कि एलन व्हाइट समझाती हैं, सब्बत हमें पवित्र बनाने की मसीह की शक्ति का संकेत है। द डिजायर ऑफ एजेस पुस्तक में हम पाते हैं उसका पृष्ठ 288 में, सब्बत हमें नया सृजन और पवित्र बना सकता है। इसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 4:9-11 पद में। इस प्रकार सब्बत परमेश्वर की सृजनात्मक और पवित्र करने वाली शक्ति दोनों का साक्षी है और इसका पालन व्यक्तिगत जीवनों की रक्षा करने, उन्हें पुनः बनाने या पवित्र करने की उसकी शक्ति में विश्वास की स्वीकृति है। इसके अतिरिक्त जो विश्राम शेष रहता है, पद 9 के अनुसार वह स्पष्टतः वह विश्राम है जिसमें पद 10 का विश्वासी मसीही प्रवेश करता है। पद 10 का के लिए शब्द पद 10 को पद 9 पर आधारित बनाता है और उसी से निष्कर्ष निकाला गया है, अर्थात यह पाप के कर्मों और मोक्ष प्राप्त करने के किसी भी प्रयास से विश्राम है। इब्रानियों 4:9 की समझ का समर्थन एलन व्हाइट ने किया है, जिन्होंने कहा है कि इस पद में विश्राम का अर्थ विश्वास का विश्राम है। तो हम अपने कर्मों से उधार पाने की कोशिश नहीं करते हैं, बाद में हम परमेश्वर में भरोसा करके उस पर विश्वास करके हम उधार पाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। जब हम अपने सृष्टिकर्ता और उधारकर्ता के साथ वह विशेष समय बिताएंगे तो अंततः हमारे साथ क्या होगा? क्या आप जानते हैं? यह हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 3:2-4:17 में। पाप के कारण मानव जाति पर जो ईश्वर से अलगाव आरंभ हुआ था वह अब समाप्त हो जाएगा। इस जीवन में हमारे पाप हमें ईश्वर के साथ सीधे संवाद करने से रोकते हैं। हालांकि वह समय आ रहा है जब ईश्वर की कृपा से वह अलगाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम एक बार फिर उनका मुख देख पाएंगे और उनसे सीधे संवाद कर पाएंगे। इस गौरवशाली अनुभव को संभव बनाने वाली प्रक्रिया यही और अभी से शुरू होती है, उनके साथ हमारी दैनिक संवाद के माध्यम से, विशेष रूप से जब हम सब्बत के दिन उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश करता है तब क्या होता है? हम एजिकेल 11:19-20 और भजन संहिता 51:10-12 में पढ़कर जानेंगे। इसका उत्तर है, जब परमेश्वर की आत्मा हृदय पर अधिकार कर लेती है तो वह जीवन को रूपांतरित कर देती है। या परमेश्वर की शक्ति है। प्यारों, यीशु के आगमन से ठीक पहले सबत और सृष्टि के सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। शैतान निसंदेह हमारे सृष्टिकर्ता और उद्धारक के साथ हमारी संगति को भंग करने के लिए कुछ भी करने को तत्पर है। शैतान हमें हमारा उद्धारकर्ता से दूर करना चाहता है। आधुनिक समय में उसका एक सबसे प्रभावी तरीका न केवल परमेश्वर के हमारे सृष्टिकर्ता होने के दावे पर बल्कि परमेश्वर के अस्तित्व पर भी संदेह पैदा करना रहा है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रकाशित वाक्य 14 में पहले स्वर्गदूत के संदेश में संसार को परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो और उसकी आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी समुद्र और जल के सोते बनाए हैं का एक विशेष संदेश मिलता है। यदि सबत का पालन सार्वभौमिक रूप से किया जाता तो मसीह कहते हैं कि तब मनुष्य के विचार और स्नेह सृष्टिकर्ता के प्रति श्रद्धा और आराधना की वस्तु के रूप में होते और कभी कोई मूर्ति पूजक नास्तिक या काफिर नहीं होता। हमें परमेश्वर पर निर्भर करना है। शैतान किन तरीकों से विश्वासियों का परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ने की कोशिश करता है? उत्तर पहला तिमोथियस 6:20 में हम पाते हैं। कई लोगों के लिए वैज्ञानिक शोध एक अभिशाप बन गया है। कई लोग महज सिद्धांतों और अटकलों को ही वैज्ञानिक तथ्य मान लेते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन की परीक्षा झूठे विज्ञान की शिक्षाओं से होनी चाहिए। पहला तिमोथियस 6:20। सृष्टिकर्ता और उसके कार्य उनकी समझ से परे हैं और क्योंकि वे इन्हें प्राकृतिक नियमों से नहीं समझा सकते इसलिए बाइबल के इतिहास को अविश्वसनीय माना जाता है। जो लोग पुराने और नए नियम के अभिलेखों की विश्वसनीयता पर संदेह करते हैं वे अक्सर एक कदम आगे बढ़कर परमेश्वर के अस्तित्व पर भी संदेह करते हैं और प्रकृति को असीम शक्ति का श्रेय देते हैं। वे अपना लंगर छोड़ देने के बाद वे अविश्वास की चट्टानों पर झूलने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। महान विवाद पृष्ठ 522। प्यारो, शैतान अच्छी तरह जानता है कि जिन लोगों को वह प्रार्थना और पवित्र शास्त्र की खोज की उपेक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकता है वे उसके हमलों से पराजित हो जाएंगे। इसलिए वह मन को व्यस्त रखने के लिए हर संभव उपाय इजाद करता है। हमारी सबसे अच्छी सुरक्षा परमेश्वर के वचन में है। जब परमेश्वर का वचन को हम अपने हृदय में रखते हैं तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं। शैतान अच्छी तरह से जानता है कि मसीह में रहने वाला सबसे कमजोर आत्मा भी अंधकार की सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली है और यदि वह स्वयं को खुले तौर पर प्रकट कर दे तो उसका सामना किया जाएगा और उसका विरोध किया जाएगा। केवल परमेश्वर पर विनम्र निर्भरता और उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करने से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। शैतान जानता है कि छोटे से छोटे विश्वासी भी जो परमेश्वर में भरोसा रखता है उसकी आज्ञाओं को मानता है उसे हराना शैतान को मुश्किल लगेगा। यह हमारे आध्यात्मिक युद्ध में मदद करने के लिए एक उल्लेखनीय और प्रभावशाली कथन है क्योंकि इसमें हमारे सृष्टिकर्ता और हमारे उद्धारकर्ता के साथ उस विशेष संगति के सभी तत्व समाहित हैं। प्रार्थना, उसके वचन से पोषित होना, उस पर विनम्र निर्भरता और आज्ञाकारिता, इन सब का सारांश यह है कि मसीह में बने रहने का क्या अर्थ है। प्यारो, पतन के बाद से सबत का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे सृष्टिकर्ता के साथ विशेष संगति प्रदान करना है जिसके द्वारा वह हमें पवित्र बनाता है। शैतान विशेष रूप से लोगों को इस संगति में भाग लेने से रोकने के लिए दृढ़ है। इसलिए वह सबत पर आक्रमण करता है जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। वह कितना कृपालु और दयालु है। जब हम पाप में गिर गए थे वह हमें फिर से अपने पास लाने के लिए अपना कदम उठाया, हमसे वह संवाद करना चाहता है और विशेष हमें उपहार दिया सब्बत का दिन, जिसके द्वारा हम उससे उसके साथ विशेष संगति में रह सकते हैं, उसके साथ हम समय बिता सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के संगति में रहें और उसके पवित्रता में बढ़े। परमेश्वर आप सबको बहुताय से आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के संवाद के लिए। पिता तू हमारा सृष्टि करता है, जो भी कि हम पाप में गिरे तू हमसे संबंध रखना चाहता है, हमें तेरे निकट लाना चाहता है और हमें पवित्र बनाना चाहता है। शब्द के उपहार के द्वारा तू हमें तेरा पवित्रता में शामिल होने के लिए बुलाता है। पिता परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हमें मदद कर, तेरा पवित्र आत्मा दे कि हम तेरे निकट आ सके। हम सबको तू बहुत आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन।
हे खुदा तूने सिखाई है हमें ये
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।